पिछले पाठ में व्यापार के लक्षण की बात हो रही थी और उसका उदाहरण जो है समझना था, तो लास्ट में हमने शीघ्रता से उसको संपन्न कर दिया। आज उसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। ये व्यापार का जो लक्षण किया उसमें दो बातें इन्होंने कही, एक तो तज्जन्य होना चाहिए उसको व्यापार को, और दूसरा तज्जन्य जनक होना चाहिए। तत् जो है ना उसका अर्थ सामान्य करिए तो उससे, तो तज्जन्य माने उससे जन्य होना चाहिए, और दूसरा जो है उसका अर्थ हुआ कि उससे जन्य का जनक होना चाहिए। तो जो उससे जन्य हो और जो उससे जन्य का जनक हो वह व्यापार कहलाता है। अब इसको आसानी से समझने के लिए आप ये समझिए कि जो करण होता है उससे का मतलब हुआ कि करण से, तो जो करण होगा ना उसके दो जन्य होंगे, जन्य माने उससे उत्पन्न होने वाला जो है वह दो होगा। तो यहाँ पर जो है कुठार जो है करण है उससे जन्य दो है, माने उससे उत्पन्न होने वाले दो हैं। कौन? पहला जो जन्य है वो है कुठार दारु संयोग, माने कुल्हाड़ी का और लकड़ी का जो है संयोग होना, ये जो है ना जन्य है, प्रथम जन्य है कुठार से। और दूसरा कुठार से जन्य कौन है? तो छिदा माने छेदन क्रिया। तो जहाँ पर भी आपको व्यापार का लक्षण ले जाना हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले दो चीज़ें गौर करनी चाहिए, एक तो वहाँ पर करण कौन है और दूसरा कि उस करण के दो जन्य कौन है, प्रथम जन्य कौन है और द्वितीय जन्य कौन है। तो यहाँ पर करण है कुठार, उससे प्रथम जन्य है कुठार दारु संयोग, और द्वितीय जन्य जो है वो है कुठार जन्य छिदा, माने कुठार से उत्पन्न होने वाली छेदन क्रिया। ठीक है, अब जो है ना इस पंक्ति को केशव मिश्र ने स्वयं लगाया है तज्जन्य, इसकी व्याख्या में लिखा कुठार जन्य, जो कुठार से जन्य है। कौन है कुठार से जन्य? तो आगे लिखा कुठार दारु संयोग, कुठार दारु संयोग रूपी जो व्यापार है वह व्यापार किससे जन्य है? कुठार से जन्य है। तो इस व्यापार में माने कुठार जन्य संयोग रूपी व्यापार में ये तज्जन्यत्व चला गया, क्योंकि तो व्यापार कहलाने के लिए तज्जन्यत्व को जाना चाहिए और तज्जन्य जनकत्व को जाना चाहिए। तो प्रथम जो है ना तज्जन्यत्व ये चला गया कुठारदारु संयोग में, क्योंकि कुठारदारु संयोग का जनक जो है कुठार है और कुठारदारु संयोग जो है उसका जन्य है। अब द्वितीय जन्य कौन है कुठार का? तो वह है छिदा, वही लिखते हैं कुठार जन्य छिदा। कुठार से दूसरा जो जन्य है उत्पन्न होने वाला है छिदा, तज्जनक उसका जनक होना। तो कुठार से जन्य छिदा का जनक माने उत्पादक जो है वो कौन है? तो वही व्यापार जो है कुठार दारु संयोग, वह जो है उस छिदा का जनक है। तो जो करण से जन्य हो और करण से जन्य का जनक हो वह व्यापार होता है। तो जैसे कुठार दारु संयोग जो व्यापार है वह करण कुठार से जन्य है और करण कुठार से जो जन्य है छिदा उसका जनक है, द्वितीय जन्य जो है छिदा उसका जनक है। माने प्रथम जन्य जो है ना वह व्यापार होना चाहिए और दूसरा जन्य जो है ना वह फल होगा, तो वह फल कौन है? छिदा फल है, उसका जो है ना जनक होना चाहिए। तो इस तरह से जिसमें तज्जन्यत्व रहेगा और जिसमें तज्जन्य जनकत्व रहेगा वह व्यापार कहलाएगा। तो कुठार दारु संयोग जो है ना व्यापार कहलाता है, क्योंकि उसमें तज्जन्यत्व अर्थात कुठार जन्यत्व रहता है और तज्जन्य जनकत्व भी रहता है, अर्थात कुठार से जन्य जो छिदा उस छिदा का जनकत्व भी कुठारदार संयोग में रहता है, इसलिए कुठारदार संयोग जो है वह व्यापार है। ऐसे ही वह जो हान उपादान उपेक्षा बुद्धि जन्य है उत्पन्न हो रही है उसमें करण कौन है? निर्विकल्पक ज्ञान जो है करण है, और व्यापार कौन है? स्वविकल्पक ज्ञान जो है वह अवान्तर व्यापार है। तो यहाँ पर भी आप तज्जन्यत्व और तज्जन्य जनकत्व को ले जाइए किसमें? स्वविकल्पक ज्ञान रूपी अवान्तर व्यापार में। कैसे? तो यहाँ पर तत् जैसे वहाँ कुठार ले रहे थे ना तत्पद से करण के रूप में, यहाँ पर हम निर्विकल्पक ज्ञान को लेंगे तत्पद से। तो तत् हो गया निर्विकल्पक ज्ञान, उससे उसका जन्यत्व जो है ना, उससे उत्पन्न होने वाला जो धर्म है किसमें रहेगा, सविकल्पक ज्ञान रूपी व्यापार में रहेगा। और फिर तत्जन्य का जनक भी व्यापार को होना चाहिए, तो तत्पद से फिर ले लीजिए किसको, निर्विकल्पक ज्ञान को। उससे जन्य कौन है, हान उपादान बुद्धि, उसका जो है ना वह जनक भी है कौन, सविकल्पक ज्ञान। तो इस तरह से इसमें भी निर्विकल्पक ज्ञान जन्यत्व भी चला गया, और निर्विकल्पक ज्ञान जन्य जो हान उपादान उपेक्षा बुद्धि है, उस बुद्धि का जनकत्व भी चला गया स्वविकल्पक ज्ञान में, इसलिए स्वविकल्पक ज्ञान व्यापार कहलाएगा। ऐसे ही पीछे में जहाँ जहाँ ये बात आई है कि ये जो है ये व्यापार है, उस व्यापार में ये लक्षण जाना चाहिए, तज्जन्यत्व और तज्जन्य जनकत्व। फिर से ध्यान रखिए, तत् से करण को पकड़ना है, तो जो करण हो उसका जन्यत्व रहना चाहिए व्यापार में, और करण से जो दूसरा जन्य होगा उस जन्य का जनकत्व रहना चाहिए व्यापार में। इस तरह से व्यापार का लक्षण जो है आपको बताया गया, और उसका उदाहरण भी बताया गया। अब यहाँ पर जो है ना, हमने क्या किया कि तीन तरह का करण माना, इंद्रिय को, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को, और ज्ञान को। इस पर जो है ना, अत्र कश्चित आह, ये ग्रंथ में कहा गया कि अत्र कश्चित आह, माने इस प्रसंग में कश्चित विद्वान आह, आह माने कहते हैं, कोई विद्वान यहाँ पर कहते हैं कि तीन तरह का करण मानने में गौरव होता है, गौरव होता है ना, भार बढ़ जाता है, बोझा हो जाता है, तीन है ना, इसलिए एक ही करण मानना चाहिए। और वो एक ही करण कौन होगा, तो इंद्रिय ही होगा करण। तो प्रत्यक्ष प्रमा में अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान में जो है इंद्रिय को ही एकमात्र करण मानना चाहिए। वही कहा स्वविकल्प का दीनाम अपि इंद्रियम एव करणम, ये अपि का, अपि माने, अपि माने भी, मतलब निर्विकल्पक ज्ञान और स्वविकल्पक ज्ञान, दोनों टाइप का जो ज्ञान है, दोनों टाइप की जो प्रमा है, उसमें एक ही करण मानना चाहिए इंद्रियम एव। इससे क्या होगा, लाघव होगा, माने भार कम पड़ेगा, एक कम होता है या तीन कम होता है, एक में लाघव है, तीन में गौरव है, मैंने तीन भारी हो जाता है और एक जो है वह हल्का रहता है। इस तरह से किसी विद्वान ने कहा कि स्वविकल्प का दीनाम अपि, जैसे आप निर्विकल्पक ज्ञान में इंद्रिय को करण मानते हैं, उसी तरह से स्वविकल्पक ज्ञान में भी जो है आपको इंद्रिय को ही करण मानना चाहिए। यावंती तु अंतरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवान्तर व्यापारः। तो करण जो है इंद्रिय को मान लीजिए, और उसके बाद जो भी स्टेप होता है, जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, ठीक है, फिर जो है ना निर्विकल्पक ज्ञान के बाद स्वविकल्पक ज्ञान होता है, तो वो जो अवान्तर जो भी कार्य होते हैं ना, वो सब को अवान्तर व्यापार मान लेना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, एक ही करण मानना पड़ेगा, एक ही व्यापार मानना पड़ेगा, और तो इससे लाघव हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान के करण और व्यापार के विचार प्रसंग में। फिर से एक बार देख लेते हैं, अत्र कश्चित आह, यहाँ कोई विद्वान कहते हैं कि स्वविकल्पिकादीनाम अपि इंद्रियम एव करणम, माने स्वविकल्पक ज्ञान हो अथवा निर्विकल्पक ज्ञान हो, सबका करण जो है इंद्रियम एव, इंद्रिय ही करण होता है। और यावंती तु अंतरालिकानि सन्निकर्षादीनि, और बीच में होने वाला जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है या ज्ञान है, वो सब सारा तानी सर्वानी अवान्तर व्यापार, उन सब को जो है ना अवान्तर व्यापार मानना चाहिए, माने मध्यवर्ती व्यापार मानना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने लास्ट में इनको कहा, इससे सिद्ध होता है कि तर्क भाषाकार को भी ये अभिमत है कि एक ही को करण मानना चाहिए इंद्रिय को, और बाकी जो भी चीजें हैं उसको जो है ना व्यापार के अंतर्गत रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे विचार ये हो रहा है, इंद्रिय के बारे में तो मैंने आपको बताया कि पांच ज्ञान इंद्रिय कौन होते हैं, और पांच ज्ञान इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वो पांच ज्ञान इंद्रियों का विषय कहलाता है, वह है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये तो मैंने अपनी ओर से कहा। अब ये ग्रंथकार आपको इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आपको मालूम है ना, इंद्रिय और उसका विषय, इन दोनों का जो सन्निकर्ष है माने संयोग है, वह छह प्रकार का होता है। वही कहते हैं कि इंद्रियार्थ वस्तु यह सन्निकर्ष है, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वह सन्निकर्ष क्या होता है, साक्षात्कारी प्रमा हेतु, साक्षात्कारी प्रमा में हेतु होता है वह सन्निकर्ष। माने जब तक इंद्रिय और विषय का संयोग नहीं होगा तब तक जो है ना साक्षात्कारी प्रमा नहीं होगी। साक्षात्कारी प्रमा माने प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी कार्य में हेतु कौन है, कारण कौन है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है कारण है। तो वह जो कारण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वह कितने प्रकार का होता है, तो सषड्विधः एव, वह छह प्रकार का जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। वह छह प्रकार कौन है तो आगे गिना रहे हैं, तद्यथा संयोग, संयोग नाम का सन्निकर्ष, फिर संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष, फिर तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय नाम का सन्निकर्ष, चौथा है समवाय सन्निकर्ष, पांचवा है समवेत समवाय सन्निकर्ष, और छठवा है विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। तो इस तरह से ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ये छह प्रकार का होता है, और यह हेतु है, यह कारण है किस कार्य में, तो साक्षात्कारी प्रमा में। साक्षात्कारी प्रमा माने साक्षात्कार करने वाले वाली प्रमा, ये प्रमा माने ज्ञान और साक्षात्कार माने प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी कार्य में ये छह प्रकार का जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह कारण होता है। अब थोड़ा सा संक्षेप में, आगे तो विस्तृत में ये बताएंगे ही, संक्षेप में मैं समझा देता हूँ। संयोग समझते हैं ना, एक साथ इकट्ठा होना जो है वह संयोग होता है। जैसे कुल्हाड़ी और लकड़ी का जो संयोग है वह क्या है, जब कुल्हाड़ी लकड़ी पर जोर से पड़ती है तो उस वहाँ पर कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग होता है। तो यह संयोग संबंध है, सन्निकर्ष को ना संबंध भी कहते हैं। हमने सन्निकर्ष का अर्थ इससे पहले आपको बताया था संयोग, ठीक है। अब आज के बाद सन्निकर्ष का अर्थ समझिए संबंध। वह संबंध जो है उसमें एक संयोग संबंध भी है, इसलिए हमने सन्निकर्ष का अर्थ संयोग बता दिया था। अब जैसे जैसे हमारा ज्ञान आगे बढ़ेगा उस तरह से हम शब्द के अर्थ को भी जो है ना चेंज करते चलेंगे। तो आज से आप सन्निकर्ष का मतलब समझ जाइए संबंध। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मतलब इंद्रिय और अर्थ का संबंध, ठीक है। तो इंद्रिय अर्थ का संबंध जो है वो छह प्रकार का होता है। पहला संबंध है संयोग संबंध। संयोग संबंध तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए हाथ से पुस्तक को छूते हैं तो क्या होता है, हाथ का और पुस्तक का संयोग संबंध होता है, तो वह संयोग संबंध। दूसरा है संयुक्त समवाय। इसमें दो शब्द हैं, संयुक्त और समवाय। संयुक्त किसको कहते हैं कि जिस संयोग संबंध से जो युक्त हो वह हो गया संयुक्त, और उसमें जिसका समवाय संबंध हो माने संयुक्त में जो जिसका समवाय संबंध रहता हो वह कहलाता है संयुक्त समवाय। अब जैसे चक्षुर इंद्रिय से संयोग होता है किसका, घट का, ठीक है। तो चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त कौन हुआ, घट हुआ, और उस घट में घट का रूप जो है समवाय संबंध से रहता है। घट में घट का रूप किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। आप याद करिए पीछे आया हुआ है कि गुण गुणिनो हो समवाय संबंध, गुण और गुणी के बीच में समवाय संबंध होता है। तो गुणी है कौन, घट, गुण कौन है, घट का रूप, इन दोनों में कौन सा संबंध होगा, समवाय संबंध होगा। तो रूप जो है वह घट में जो रहेगा वो किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। गुण जो गुणी में रहता है वह समवाय संबंध से रहता है। तो संयुक्त समवाय को समझाने के लिए मैं बता रहा था कि चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त कौन है, घट, उस घट में समवाय संबंध से कौन रहता है, घट में रहने वाला रूप, तो वहां पर संयुक्त समवाय संबंध होता है। किसके बीच में, चक्षुर इंद्रिय और घट रूप के बीच में कौन सा संबंध होता है, संयुक्त समवाय संबंध होता है। इसी तरह से तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय। अब इसमें एक बढ़ गया समवेत शब्द। समवेत का अर्थ जानिए, समवाय संबंधेन स्थितः समवेतः। समवाय संबंध से जो कोई वस्तु स्थित रहती है उस वस्तु को हम समवेत कहते हैं। तो संयुक्त समवेत समवाय संबंध भी होता है किस किन दोनों के बीच में, इंद्रिय और अर्थ के बीच में, ठीक है, इसका उदाहरण पर देखेंगे, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब चौथा संबंध है इंद्रिय और अर्थ के बीच का कौन, समवाय संबंध। फिर पांचवा है समवेद समवाय संबंध, और छठवां है विशेष विशेषण भाव संबंध। अब एक एक का जो है ना ये उदाहरण बताएंगे। पहला जो है संयोग संबंध, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उसके बारे में बताते हैं। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते, यदा माने जब चक्षुष के द्वारा माने चक्षुरूपी इंद्रिय के द्वारा घट विषयक ज्ञान जन्यते माने उत्पन्न होता है। याद करिए मैंने कहा था ना कि जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञान का विषय होता है, तो घट का ज्ञान हो रहा है तो उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, घट विषयक ज्ञान कहेंगे। माने घट है विषय, जिस ज्ञान का वो हो गया घट विषयक ज्ञान। तो यदा चक्षुषा घट विषयकम ज्ञानम उत्पद्यते, जब चक्षुष के द्वारा नेत्र रूपी इंद्रिय के द्वारा घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, तदा उस समय में उस ज्ञान में चक्षु इंद्रियम, चक्षु जो है वह इंद्रिय है, और घट जो है अर्थ है माने उसका विषय है, और अनयोह सन्निकर्ष माने इन दोनों का माने चक्षुरिंद्रिय का और घट का जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष का अर्थ क्या समझाया आज, संबंध। तो इन दोनों का जो संबंध है वह कौन है, संयोग एव, संयोग संबंध है। तो अब यहाँ पर प्रश्न आया कि चक्षुरूपी इंद्रिय और घट रूपी अर्थ, इन दोनों का संबंध जो आप संयोग कह रहे हैं समवाय क्यों नहीं कह रहे हैं। तो कहा कि इसलिए कि समवाय जो होता है ना, कहाँ, जहाँ अयुत सिद्ध होता है, जो अलग अलग रहने पर सिद्ध न हो सके, एक साथ रहने पर ही सिद्ध हो सके, उसको कहते हैं अयुत सिद्ध। युत सिद्ध माने पृथक पृथक रह करके जो सिद्ध रहता है, अयुत सिद्ध माने बिना पृथक रहे जो सिद्ध रहता है, माने एक जगह रहने पर ही सिद्ध रहता है। इस तरह से इसमें समवाय इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अयुत सिद्धि का अभाव है। जहाँ अयुत सिद्धि रहती है वहीं पर जो है समवाय संबंध होता है, और यहाँ पर क्या है, युत सिद्धि है। कैसे, तो चक्षुरिंद्री भी अलग से रहती है और घट भी जो रूपी जो अर्थ है वो भी अलग से रहता है। घट की सिद्धि के लिए माने घट के अस्तित्व के लिए, घट की विद्यमानता के लिए चक्षु इंद्रिय का होना जरूरी नहीं है, और चक्षु इंद्रिय की विद्यमानता के लिए घट का होना जरूरी नहीं है। तो ये दोनों क्या है, युत सिद्ध है, माने अलग अलग जो है ना अपनी जगह पर रहते हैं, एक से दूसरे की कोई बहुत जरूरत उसके होने के लिए चक्षुरिंद्री के जन्म के लिए घट की जरूरत नहीं है, और घट के जन्म के लिए चक्षुरिंद्री की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये दोनों युत सिद्ध हैं, और जो युत सिद्ध पदार्थ होते हैं उसका संबंध जो है वह संयोग संबंध होता है, समवाय संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से जब चक्षुरिंद्री के द्वारा घट विषय ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान में चक्षु जो है इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का काम इंद्रिय होता है, होती है, और घट जो है वहाँ पर अर्थ होता है, और दोनों का संबंध जो है वह संयोग संबंध होता है। और आज का पाठ यहीं रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।